मुनि विद्यारण्य स्वामी विरचित एवं पूज्य भारती तीर्थ जी महाराज संपूरित पंचदशी ग्रंथ का ध्यानदीप प्रकरण चल रहा है, जिसके 26वें हुआ कि 25वें श्लोक तक किया हो, 25 पूरा किया ना, हाँ 25वें श्लोक तक विचार कर लिया था। 25वें श्लोक में बहुत सुंदर बात आई थी कि सकृत आपतोपदेशेन परोक्ष ज्ञानम उद्भवेत, विष्णु मूर्ति उपदेशो ही न मीमांसम अपेक्षते। देखो, परोक्ष ज्ञान जो होता है वो कैसे होता, कहां सकृत उपदेशेन, आप्त सकृत उपदेशेन परोक्षम उद्भवेत। एक बार आप्त पुरुष के द्वारा जब उपदेश दे दिया जाता है कि ब्रह्म है, दशम पुरुष का जो उदाहरण दिया कि दशम पुरुष है, इसी प्रकार से जब उस ब्रह्म के संबंध में कहते हैं कि ब्रह्म है, ब्रह्म मात्र सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्मा, ये जो बोध होता है एक बार आप्त पुरुष उपदेश करता है, इतने से ही परोक्ष ज्ञान तो हो जाएगा। विष्णु मूर्ति उपदेशो ही न मीमांसम इक्षते, तो जैसे परोक्ष ज्ञान श्रद्धालु पुरुष को आप्त पुरुष के द्वारा एक बार बताने में ही ज्ञान हो जाएगा कि ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। कोई बालक अपनी मां से पूछे कि मां ये हर दिन उदय होता है और फिर अस्त हो जाता है, कैसे होता है, कभी सर्दी लगने लगती है, कभी भयंकर गर्मी लगती है, कभी अपने आप वृष्टि होने लगती है, आसमान में बादल आ जाते हैं, मां ये कैसे होता है, तो मां क्या कहेगी, बेटा भगवान करता है, सूर्य उदय भगवान करता है, सर्दी गर्मी वर्षा भगवान करता है। इतने में बच्चे ने मान लिया ना कि भगवान है। अब कैसा है भगवान, कहां है भगवान, क्या स्वरूप है, वो बाद की बात है। एक तस्वीर देख करके पूछता है कि मां ये कौन है, मां ने कहा भगवान है, बस मान लिया। गौ के साथ में भगवान कृष्ण की जब बचपन में तस्वीर देखता था तो पूछता था कि ये कौन है, बोले भगवान है। फिर जिज्ञासा होती थी कि कहां रहते हैं, तो मां बोलती है वृंदावन में रहते हैं। तो मैं कहा कि वृंदावन कब चलेंगे, भगवान से मिलेंगे, तो कब चलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये बाद का प्रश्न है, पर भगवान है ये तो मान लिया ना, परोक्ष ज्ञान तो हो ही गया। तो मां के कहने से ही भगवान का ज्ञान हो गया, वो आप्त पुरुष है, उसके द्वारा एक बार कहने पर ही भगवान का परोक्ष ज्ञान हो जाता है। इसमें ज्यादा मीमांसा की कहां जरूरत है, विष्णु मूर्ति उपदेशो ही न मीमांसा में अपेक्षते। इसी प्रकार से आप्त पुरुष ने एक मूर्ति में बोल दिया कि यह भगवान विष्णु है, मान लिया भगवान विष्णु है। अब वो भगवान विष्णु बैठे हुए हैं कि लेटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, कैसे हैं, कितने भुजा है, वो चक्रकार कैसे बन गई, ये सारे प्रश्न बाद की बात है। तो एक बार तो मान ही लिया कि ये शालिग्राम जो मूर्ति है ये भगवान विष्णु है, इतना तो मान ही लेते हैं। यहां मीमांसा की अपेक्षा नहीं है, जानने में मीमांसा की अपेक्षा नहीं है, कैसे है ये जानने में जरूर मीमांसा करनी पड़ेगी। तो कहते हैं ऐसा ही है तब तो ननो तर ही शास्त्रेषु कुतो विचारा करियंते इति आशंक्य। फिर तो आशंका उठती है कि फिर शास्त्र से विचार करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, एक बार कह दिया और मान लिया, कह दिया किसी ने मान लिया, आप तो पुरुष जिस पर हमें विश्वास है, जो हम मानते हैं कि ये असत्य नहीं बोल सकते, जो कहेंगे सत्य ही है, उस पुरुष के द्वारा जब जान लिया तो फिर शास्त्र को पढ़ने की कहां जरूरत है, शास्त्र का विचार करने की क्या आवश्यकता है। तब उसका उत्तर देते हैं कि नहीं, परोक्ष रूप से जान लेने पर भी शास्त्र के द्वारा मीमांसा की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? अनुष्ठेयो हो कर्मोपासनयो हो संदेह संभवात तद निर्णयाय विचारः क्रियन्ते इति आह। इसलिए जरूरत है विचार की, मीमांसा की। विचार और मीमांसा समान ही, जिसको विचार कहते हैं चिंतन करना, वही मीमांसा है। अनुष्ठेयो हो कर्मोपासनयो हो, जो अनुष्ठान करने योग्य कर्म और उपासना है, जिसका हम अनुष्ठान कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कई प्रकार के संदेह संभव है। जो कर्म करते हैं और जो अनुष्ठान करते हैं उसमें संदेह संभव है। अब देखो भाई, प्रतिमा में भगवान की उपासना करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये तो मान लिया कि प्रतिमा भगवान है। पर अब भगवान की प्रतिमा तो बहुत सारे हमारे मित्र ने कहा, हमारे पड़ोसी ने कहा कि हम तो शिव की पूजा करते हैं, तो हम बोले हम विष्णु की पूजा करते हैं। शिव कौन है? बोले भगवान है। विष्णु कौन है? बोले मेरे गुरु ने कहा ये भगवान है। अब उनके लिए दो भगवान हो गए, एक पड़ोसी का भगवान और एक हमारा भगवान, उनका शिव भगवान और हमारा विष्णु भगवान हो गया। भगवान की उपासना में संदेह हो गया। अब तब ऐसी स्थिति में बोले शिव भी भगवान है, विष्णु भी भगवान ही है, तो शिव विष्णु की तो हम सालग्राम में पूजा कर रहे हैं और पिंड के अंदर तुम विष्णु की पूजा कर रहे हो, तो अब यहां संदेह तो हो गया कि पिंड में पूजा करनी चाहिए कि सालग्राम में पूजा करनी चाहिए, संदेह तो हो गया। तो कर्म और उपासना में इस प्रकार संदेह उपस्थित हो जाता है। ठीक है, वहां शास्त्र का विचार इसलिए करते हैं कि जो अनुष्ठेय कर्म है और अनुष्ठेय जो उपासना है, दोनों जगह संदेह होता है। वहां पर संदेहा संभवात, इस प्रकार का संदेह हो जाना संभव है। दूसरी बात यह है कि कर्म उपासना की जो विधि है वो शास्त्र में विस्तृत विचार है। कर्म उपासना का जो मंत्र है वेद में, वो तो 96,000 मंत्र हो गए दोनों पक्ष मिलाकर के, 80 और 16 मिलाकर के, और इतने सारे मंत्रों में अधिकारी भेद से, प्रसंग भेद से, परिस्थिति भेद से एक ही कर्म को जुदा जुदा ढंग से कहीं वर्णित किया गया हो, तो किस प्रकार से उस यज्ञ आदि कर्म को करना चाहिए, किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए, तब उसका समाधान पाने के लिए मीमांसा की जरूरत है, विचार की जरूरत है। कि वहां कुछ कहा यहां कुछ कहा, विधि में जो भेद मालूम पड़ता है उसकी समानता के लिए, जैसे ब्रह्म सूत्र में बहुत बड़ा प्रसंग देना पड़ा, गुणोपसंगार जो प्रसंग आया उपासना का, वो इसीलिए तो आया कि वहां अमुक जगह उपासना दूसरे ढंग से बताई, वहां दूसरे ढंग से, छांदोग्य में भी उसी उपासना का वर्णन है तो बृहदारण्यक में भी उसी उपासना का अंतर है, वहां कुछ शब्दांतर हो गया, इधर कुछ शब्द और हो गया, वहां कुछ विधि में अंतर आ गया, अंतर तो आ ही जाता है। गति का वर्णन आया है ब्रह्मलोक में जाने वालों के लिए, कहीं किस लोक के बाद में कौन सा लोक आता है, अब उस लोकों के संबंध में बहुत बड़ा एक संदेह उपस्थित हो जाता है, तो उन सारों की एक व्यवस्था शास्त्र में विचार करके ऋषियों ने, आप्त पुरुषों ने निर्धारित की है, तो वहां विचार की तो जरूरत है ही है, वहां आवश्यकता होती है। शास्त्रों में ये कह रहे थे कि भाई जब एक बार आप्त पुरुष के द्वारा सुन लेने में ही ज्ञान हो जाता है तो फिर विचार करने की कहां आवश्यकता है, बोले विचार की आवश्यकता इसीलिए है जो अनुष्ठेय कर्म उपासना है उसमें संदेह हो सकता है, तब उस संदेह के निर्णय करने के लिए कि क्या सही है, क्या विधि है, कैसे करना चाहिए, वहां मीमांसा की जरूरत है। वही श्लोक में बता रहे हैं, उच्चारण करें। कर्मोपास्ति विचार्येते, अनोष्ठेया विनिर्णयात् बहुशाखा विप्रकीर्णम् निर्णेतुम् कः प्रभुर्नरः। कर्मोपास्ति विचार्यते अनोष्ठेय अविनिर्णयात्। जो अनोष्ठेय कर्म उपासना है अविनिर्णयात विचार्यते, जिनका अनुष्ठान करना चाहिए अनुष्ठान करने योग्य है। देखो ज्ञान अनुष्ठेय है कि नहीं? है? ज्ञान अनुष्ठेय नहीं है, वो तो ज्ञेय है, ज्ञान साधन है। जिसका अनुष्ठान किया जाता है, जिसके पीछे पीछे स्थिति बनाई जाती है, वो कर्म उपासना ही होगा। उसको अनुष्ठेय क्यों कहते हैं? इसलिए तो कहते हैं कि कर्म और उपासना के बाद ही ज्ञान की स्थिति निष्ठा बनेगी। तो ये तो करने के है अनुष्ठेय, अनुष्ठान करने योग्य है। बड़ी निष्ठा पूर्वक कर्म और उपासना को करना चाहिए। तो कर्म उपासना जैसे करने की चीज है, प्रयत्न साध्य है, क्रिया साध्य यूं कहो, तो कर्म उपासना जैसे क्रिया साध्य है, बोध क्रिया साध्य नहीं है। किस क्रिया से बोध होगा भाई? वो तो वस्तुतंत्र है। अनुष्ठेय तो इसलिए है कि वो हमारे अधीन है, हम करेंगे जैसे होगा, लेकिन ज्ञान तो जैसा उसको वैसा ही जानना पड़ेगा, उसमें करने की जरूरत नहीं है। शालिग्राम में हमने भगवान विष्णु मान लिया और पिंड में शिव मान लिया, तो यहां तो उसमें मान करके अनुष्ठान कर सकते हैं, पर जान लोगे तो जानने में तो पाषाण है बाबा, वो जानने में तो ज्ञान मात्र है। इसलिए यहां पर दो के लिए बोल रहे हैं, कर्मो उपास्ति, कर्म और उपासना दोनों है, द्विवचन का प्रयोग है यहां। कर्मोपास्ति अनुष्ठेय, दोनों अनुष्ठेय है, यहां भी संधि है, अनुष्ठेय लिखा ना, अनुष्ठेय कर्मोपास्ति ऐसा अन्वय लगाओ। फिर आव आदेश होकर के व का बाद हो गया, तो अनुष्ठान करने योग्य जो कर्म उपासना है उसके संबंध में अविनिर्णयात विचार्यते, विशेष रूप से निर्णय नहीं होने के कारण अविनिर्णयात वि उपसर्ग लगाया गया यहां पर, निर्णय से पहले वि उपसर्ग है, इसलिए है कि विशेष रूप से निर्णय नहीं होने के कारण अब विशेष निर्णय करके ही तो उपासना की जाएगी ना, समझे बिना जाने बिना उपासना कैसे करेंगे, तब ऐसी स्थिति में उसका विचार किया जाता है कर्म उपासना का, वह विचार की आवश्यकता है। क्यों? बोले अविनिर्णय क्यों है, विशेष रूप से निर्णय क्यों नहीं होता है? कारण यह है कि बहुशाखा वि प्रकीर्णम निर्णय तुम क नरह प्रभु, बहुत सारी शाखाओं में विभिन्न प्रकार से कथित होने के कारण, वर्णित होने के कारण, प्रकीर्णम विप्रकीर्णम विशेष प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से जिसका विचार होने के कारण अनेक शाखाएं और शाखा भेद से, देखो एक ही चीज को बताते हैं लेकिन शाखा भेद है, वह वक्ता भेद है, इसलिए कहीं शब्दांतर भी हो जाता है, और शब्दांतर होता है तो उसको समझने में संदेह भी उपस्थित हो जाता है, चीज वो की वही कही जा रही है लेकिन थोड़ा अंतर तो आ ही जाएगा ना, इसलिए वो उपासना आदि में भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अब पूजा करने के लिए बैठते हैं, पूजा करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि महाराज जो पूजा करके जप करना चाहिए कि जप करके पूजा करनी चाहिए, और जप करके ध्यान करना चाहिए कि ध्यान करके जप करना चाहिए, संदेह हो जाता है कि नहीं? बोले फलाने को देखा, वो पहले पूजा कर लेते हैं और फिर ध्यान करते हैं, उठते समय जप कर लेते हैं, लास्ट में दो माला, तीन माला, पांच माला जप ली। कहते हैं कोई ऐसा करते हैं कि पूजा किया और पहले माला जप लेते हैं, फिर ध्यान करते हैं, ध्यान से उठ करके आरती किया और चल पड़ते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। तो संदेह हो गया कि नहीं, अरे करना तो कुछ कुल मिलाकर के पूजा करनी है, जप करना है, ध्यान करना है, आरती करनी है, प्रसाद वितरण करना है, भोग लगाना, करना तो यही है। अब संदेह हो गया कोई किस विक्रम से करते हैं, कोई किस क्रम से करते हैं, तो संदेह तो हो ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुशाका विप्रकीर्णम निर्णय तुम कह नरह प्रभु। इस प्रकार से बहु शाखाओं में जो भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णित है, कथन किया गया है, प्रकार है, उसका निर्णय करने के लिए कौन मनुष्य समर्थ होता है। प्रभु का अर्थ यहां पर समर्थ, निर्णय करने में कौन समर्थ होता है, अर्थात वहां विचार की जरूरत है, विचार के बिना निर्णय कैसे कर लेगा, यह आवश्यकता है। संदेह संभवम एव उपपादयति, कर्मोपास्ति से ये हो रहा है कि संदेह संभवम एव, संदेह उपस्थित तो होता ही है तब उसका उपपादन करते हैं कि बहुशाखा अनेकासु शाखासु तत्र तत्र चोदितम कर्म उपासनम वा एकत्र समाहरित्य निर्णयत्वम अस्माद आदिर नरह क प्रभु समर्थ न कोयम को अपी इत्यर्थ। कहते अनेक शाखाओं में जहां जहां उसका वर्णन किया गया है, कर्म उपासनम व एकत्र समाहरित्य, जैसे कर्म और उपासना का ईश्वास्य उपनिषद में ही आएगा कि एक बोले कर्म और उपासना जुदा जुदा करने चाहिए कि कर्म और उपासना को एक साथ करना चाहिए। जैसे ज्ञान और कर्म का परस्पर विरोध है, जहां कर्म है वहां ज्ञान नहीं, जहां ज्ञान है वहां कर्म नहीं, इसी प्रकार से जहां कर्म है वहां उपासना नहीं, जहां उपासना है वहां पर कर्म नहीं, ऐसा है क्या? संदेह हो गया, क्योंकि तीन साधन बताए हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान है। तो जैसे ज्ञान का इनके साथ में मेल नहीं होता, तो ऐसे कर्म और उपासना का मेल है कि नहीं, अलग अलग करने चाहिए कि एक साथ करने चाहिए? क्योंकि आप वेदांत पढ़ने वाले हैं, निर्णय करने वाले हैं, विचारक हैं, इसलिए आप तो कह देंगे कि नहीं नहीं कर्म उपासना तो साथ साथ में की जा सकती है, ये सवस्य उपनिषद में आएगा ही आएगा। लेकिन कर्म उपासना और ज्ञान तीनों का समन्वय संभव नहीं, ज्ञान में कर्म नहीं और कर्म में कर्तापन के बिना कर्म नहीं हो सकता, और अकर्तापन की स्थिति के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान में अकर्तापन है और कर्म में कर्तापन है, तो कर्तापन अकर्तापन दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए दोनों अलग अलग ही होंगे। परंतु उपासना में और कर्म में यहां तो दोनों जगह कर्तापन है, एक शरीर प्रधान कर्म है और एक मन प्रधान कर्म है, एक मानसिक रूप से कर्म हो रहा है और एक शारीरिक रूप से कर्म हो रहा है, दोनों कर्म विभाग के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। अब ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके लिए तो शास्त्र से निर्णय करना पड़ेगा ना, तर्क आदि से निर्णय करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझ लेंगे। तो अनेकासु शाखासु तत्र तच्चोदितम कर्म उपासनम वा एकत्र समाहरित्य निर्णयत्वम अस्माद आदि नरह कहा प्रभु समर्थ है। इस प्रकार से जो कर्म और उपासना दोनों एक जगह उनको इकट्ठे करके उपासना के लिए निर्णय करने में, निर्णय करने के लिए कौन मनुष्य है हमारे साथ में भीतर ऐसा जो निर्णय कर सकता हो, उसका निर्णय तो मनुष्य तो कर ही नहीं सकता। कौन करेगा? बोले शास्त्र ही निर्णय देगा उसका। न कोपी इत्यर्थ है, कौन समर्थ है, इसका अर्थ हुआ यह है कोई भी उसको निर्णय करने में समर्थ नहीं होगा, शास्त्र ही विचार देगा, इसलिए शास्त्र से विचार मीमांसा करनी ही पड़ेगी। ननु तरही अनुष्ठेयम तरही अनुनुष्ठेयम एव कर्मोपासनयो प्राप्तम इति आशंक्याः। अब ये प्रश्न खड़ा, एक आशंका उपस्थित करते हैं कि ऐसा यदि है तरही तो फिर अनुनुष्ठेयम एव कर्मोपासनयो प्राप्तम। कर्म जो कर्म और उपासना है ये दोनों के दोनों अनुष्ठेय नहीं है ऐसा प्राप्त होता है। भाई विचार के हैं तो विचार करना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए कि मीमांसा करनी चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। आप कहते हैं कि इसका विचार करने में ये निर्णय करने में कौन समर्थ है, जब इसका निर्णय करने में कोई भी समर्थ नहीं है कर्म और उपासना के संबंध में, तो जिसका निर्णय ही नहीं हो सकता है उस अनिर्णित साधन को ग्रहण करने का क्या अर्थ है। कोई भी समर्थ नहीं है तो अनिर्णित का साधन अपनाने से लाभ क्या होगा, तो कर्म उपासनयो अनुष्ठेयम एव प्राप्तम। कर्म और उपासना दोनों अनुष्ठेय नहीं है फिर तो ऐसा ही प्राप्त होता है, क्योंकि निर्णय नहीं है जिसके संबंध में, उसको कैसे ग्रहण किया जाए। तब यहां पर उसका उत्तर है 27वें श्लोक में, उच्चारण कर ले। निर्णीतोऽर्थ कल्पसूत्रैर् ग्रथितस्तावतास्तिकः निर्णीतोऽर्थ कल्पसूत्रैर् ग्रथितस्तावतास्तिकः विचारमन्तरेणापि विचारमन्तरेणापि शक्तोऽनुष्ठातुमञ्जसा शक्तोऽनुष्ठातुमञ्जसा। कर्म और उपासना अनुष्ठेय नहीं है ऐसा तात्पर्य नहीं है, तो क्या है? कहा कर्म और उपासना तो अनुष्ठेय है लेकिन उसका निर्णय करने में स्वयं समर्थ नहीं है, कहने का अर्थ यह था कि व्यक्ति अपने से उसका निर्णय नहीं कर पाएगा। तो कैसे होगा? बोले जिन ऋषियों ने, जिन मनीषियों ने, जिन विद्वानों ने उन शास्त्रों को आद्योपांत समझा है वही निर्णय कर पाएंगे। हमने तो संपूर्ण देखो, ये जो हमारा 4000 मंत्रों का उपनिषद है वो भी सारे उपनिषद अध्ययन नहीं की, 9-10-11 उपनिषदों में ही रह जाते हैं। तो 96,000 जितने मंत्र हैं उसको अध्ययन करने वाले कितने लोग हैं यहां? तो इतने विस्तृत जो शब्द जाल है उसे शब्द जाल में वो निर्णय कैसे कर पाएगा? जिसने सारे शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं है, और पढ़ा तो पढ़ने का उसके पास समय नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है, या फिर अपने आप ही पढ़ करके खुद शब्द जाल में उलझ गया, वो व्यक्ति निर्णय कैसे कर पाएगा जी? एक बार वो अजमेर में एक बहुत अच्छे महात्मा रहा करते थे, बड़े वेदांती थे, स्वामी मनोहर दास जी महाराज करके थे, पर महाराज श्री जी जो थे साधना सदन वाले उनसे उन्होंने पंचदशी पढ़ा था पूरा, और महाराज जी उनका दोनों का बहुत अच्छा संबंध रहा। कभी कभी महाराज जी कहते थे कि मेरा विचार था कि जीवन में उत्तरकाशी में ही रहेंगे, उत्तरकाशी नहीं छोड़ेंगे, साधना सदन वगैरह कुछ नहीं बना, महाराज जी तो बड़ी त्यागवर्ती में रहे ना, एक कौपिन धारण करके हिमालय में रहे, तो विचार था कि उत्तरकाशी में ही रहेंगे, वो त्यागमूर्ति इसीलिए तो उनको बोलने लगे थे लोग, गंगोत्री जैसी जगह पर शरीर पर कपड़े न रखना, असंभव सा ही लगता है कि नहीं आज उस स्थिति में रहे, पैदल चल करके हिमालय लांग करके कैलाश की यात्रा किया, कई कई दिनों तो खाने को कुछ नहीं मिला, वो झरनों के किनारे थोड़ी थोड़ी हरी हरी घास निकल आती। गुरुजी कहते हैं जैसे कोई वो मृग आदि हरी घास खाता है वैसे वो घास चुन चुन करके खा करके भी आगे यात्रा किया। ऐसी कठोर यात्रा जिन्होंने की हो, हिमालय में रहे हो, वो महाराज जी कहा करते थे कि मानव विचार यही था कि उत्तरकाशी नहीं छोड़ेंगे। बाद में उत्तरकाशी में आ गए, वर्षों तक रहे, कई महापुरुषों को उन्होंने वहां अध्ययन करवाया। पंचदशी तो महाराज जी को कंठस्थी ही थी, विचार किया कि उत्तरकाशी में ही रहेंगे। तो उनसे पढ़ते थे अजमेर वाले स्वामी जी मनोहर दास जी महाराज। तो बात में बात याद आ गई इसलिए बता रहा हूं, बड़ी शिक्षा की बात है। तो महाराज जी का स्वभाव कैसा था, जिन्होंने बहुत सानिध्य पाया उनको पता ही होगा। महाराज जी थोड़ी भी कोई गलती करता हो तो सहन नहीं कर पाते, एकदम उस पर बिफर जाते थे। तो डर तो लगता ही था कहीं हमसे गलती न हो जाए, गलती न हो जाए। वो मनोहर दास जी महाराज जी से पढ़ते थे। एक दिन महाराज जी सुनाते थे कि मनोहर दास ने डरते डरते मेरे से एक सवाल किया। महाराज जी बताया करते थे स्वयं, बोले डरते डरते उसने एक सवाल किया कि महाराज श्री आपने जो ये कहा और विचार किया है कि मैं जीवन भर उत्तरकाशी में ही रहूंगा, ये भी तो स्थान विशेष के प्रति एक आसक्ति कही जाएगी कि नहीं, उन्होंने पूछा कि आपने निर्णय किया कि मैं उत्तरकाशी में ही रहूंगा, ये भी तो स्थान विशेष के लिए आसक्ति ही तो कही जाएगी ना। महाराज जी कहने लगे कि उस महात्मा को तो मैंने टाल दिया कि ऐसी बातें नहीं करते, कहीं न कहीं तो रहना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ करके उनको जवाब दे दिया, परंतु उसका वो सवाल मेरे चुभ गया और बोले उसका बार बार विचार करता रहा कि आखिर कहा तो सही है, भले ही मेरा विद्यार्थी है लेकिन इसका सवाल उचित है, ये स्थान विशेष के प्रति आसक्ति हो सकती है। बोले उसके उस वाक्य ने मेरा उत्तरकाशी छुड़वा दिया। महाराज जी कहते थे उस वाक्य ने उत्तरकाशी छुड़वा दिया। हां, तो ऐसे एक महात्मा थे वो मनोहर दास जी महाराज जी से पढ़े हुए, अजमेर में बाद में आकर के रहे। उनके पास में एक कलकत्ता के कोई सज्जन थे, मैं थोड़े दिनों उनके पास में रहा था, 10-12-13 दिन, ज्यादा नहीं रहा। उस बीच में कलकत्ता से एक सज्जन आए और दर्शनों की बात दोनों के बीच में होने लगी। अच्छे श्रुत व्यक्ति था जो महाराज जी से परामर्श कर रहा था। तो जब दर्शनों के संबंध में चर्चाएं हुई, उस वक्त तो मैं इतना समझता भी नहीं था, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जो उनका संवाद चल रहा। उसके ज्ञान को देख करके मनोहर दास जी महाराज ने उससे पूछा कि आपने क्या क्या पढ़ा है, सब दर्शनों की जानकारी लग रही है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि स्वामी जी मैंने भारतीय जो आस्तिक नास्तिक करके बाहर है दर्शन है, सारे दर्शन पढ़े हैं, इसके अलावा कुछ पाश्चात्य दर्शनों को भी देखा है। तो स्वामी जी ने उनसे पूछा कि इतने सारे दर्शनों का तुमने अध्ययन कर लिया, तो ये बताओ कि इन दर्शनों में पढ़कर के तुम किस निर्णय पर पहुंचे, सत्य दर्शन कौन सा है, यथार्थ कौन सा, किस निर्णय पर पहुंचे, तुमने सबको पढ़ा है। वो व्यक्ति कहने लगा कि स्वामी जी सच्चाई यह है कि सारे दर्शन पढ़ते 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 मेरा जो मस्तिष्क है वो कबाड़ी मार्केट बन गया। मस्तिष्क कबाड़ी मार्केट, वो कबाड़ी में कोई भी वस्तु व्यवस्थित रखी हुई नहीं होती है, जो फेंका वैसे ढेर लगा होता है, परंतु छटनी कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। ठीक इसी प्रकार से इतना शास्त्र का जो ज्ञान है दर्शनों का, वो इतनी उलझन मेरे मस्तिष्क में हो गई है कि मैं स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। आप बताइए ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि नहीं। इस शास्त्र जाल में यदि स्वयं अपने आप ही फंस गया तो उसका निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है, कौन समर्थ है ऐसा करने में, तो हमारे जो प्राचीन ऋषि महर्षि थे उनको इस बात का पता था कि वो समय आएगा कि पहली बात शास्त्रों को संपूर्णता से अध्ययन करने वाले ही नहीं मिलेंगे, और कदाचित कोई संपूर्णता से अध्ययन कर लेगा तो अपने मस्तिष्क को कबाड़ी मार्केट बना डालेगा, वो निर्णय नहीं कर पाएगा। तो उन जीवों को संदेह न हो और अपनी साधना कर सके, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, उनके लिए मनीषियों ने ऋषियों ने बड़ी एक सुविधाएं उपलब्ध की है। मीमांसा इसीलिए जरूरत होती है, पर सामान्य व्यक्ति मीमांसा नहीं कर सकता। मीमांसा वो कर सकता है जिन्होंने अपने शास्त्र के प्रति सारा जीवन समर्पित किया है। उस बात को यहां पर बता रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। निर्णितो अर्थ कल्प सूत्र ही गथित है, तावता अस्ति कह विचारम अंतरेणापि शक्तो अनुष्ठातुम अंजसा। ये कर्म और उपासना के संबंध में जो निर्णित अर्थ है, उस निर्णित अर्थ का व्यक्ति स्वयं तो निर्णय करने में समर्थ नहीं है, लेकिन कल्प सूत्र ही गथिता है। जो कल्प सूत्र है, जैसे ब्रह्म सूत्र है, ऐसे ही कर्म उपासना के संबंध में कल्प सूत्र है, जिस कल्प सूत्र के 16 अध्याय माने जाते हैं। और ब्रह्म सूत्र के कितने अध्याय हैं? तो 4 अध्याय वाले ब्रह्म सूत्र को भी हम ठीक से नहीं समझ पाते, अपना निर्णय नहीं कर पाते उसमें। तो 16 अध्याय वाला जो कल्प सूत्र है वो सामान्य व्यक्ति के वश का खेल है क्या? तो हमारे ऋषियों ने वो सारा जो शास्त्र का अर्थ है उस अर्थ को समेट करके कल्प सूत्र में डाला है। निर्णितो अर्थ कल्प सूत्र ही ग्रथित है, कल्प सूत्रों के द्वारा उन मनीषियों ने जो निर्णित अर्थ है कि क्या कैसे कर्म और उपासना करना चाहिए, उन सब को वहां पर एकत्रित किया है। तावतास्ति कह विचार मंत्रेण शक्तो अनुष्ठातुम अंजसा। इसलिए वो जो कल्प सूत्रों में निर्णित अर्थ है उसको भी समझ पाना बड़ा कठिन है, तब सामान्य व्यक्ति बिना विचार के उसको कैसे समझ लेगा? तुमने कहा कि बढ़िया विचार की क्या आवश्यकता है, अरे विचार की इसलिए आवश्यकता है वहां पर कि कल्प सूत्रों में ऋषियों ने जिसको एकत्रित किया है उसको समझने के लिए भी विचार की जरूरत है। और जब विचार से उसको जान लेता है, बिना विचार के तो शीघ्र उसको अनुष्ठान करने में समर्थ कैसे होगा? और सूत्रों के द्वारा समझ करके और विचार करके सारे के सारे शास्त्रों को ढूंढ करके तो निर्णय करना मुश्किल होगा, लेकिन कल्प सूत्रों से वो इतना मात्र से ही अपना निर्णय कर सकता है। इसलिए अंजसा अनुष्ठातुम शक्त है, बड़ी शीघ्रता से वो अपने अनुष्ठान के प्रति लग सकता है। जैमिन्यादि भी पूर्वाचार्य ही निश्चितो अर्थ अनुष्ठान प्रकार कल्प सूत्र ही संग्रहितो अस्ति तावता तेर ग्रथित त्वेन एव तेषु विश्वासवान पुरुष विचारम विनापि कर्म सम्यक अनुष्ठातुम शक्नोति एव। अब स्वयं तो सारे शास्त्रों में इतना विस्तार से नहीं कर सकता, लेकिन जैमिन्य आदि जो पूर्व आचार्य हुए कर्मकांड के आचार्य, जिन्होंने इस प्रकार के ये कल्प सूत्र लिखे हैं, उन्होंने जो निश्चित अर्थ कर दिया है कि यह ऐसा होना है, उस अनुष्ठान प्रकार को उन कल्प सूत्रों के द्वारा ही जान करके जो संग्रहित किए हुए हैं उनको समझ करके कि ऐसा है, उसी से तावता तेर ग्रथितत्वेन एव तेषु विश्वासवान पुरुष, जो उन ऋषियों के द्वारा जैमिनि आदि के द्वारा वो संग्रहित किए ग्रथित किए जो निर्णय है, उन निर्णयों से ही तेषु विश्वासवान पुरुष, उन ऋषियों के प्रति अथवा ऋषियों ने जो कल्प सूत्र आदि बनाए हैं उन सूत्रों के प्रति जो श्रद्धावान पुरुष है, लेखक के प्रति और जो उनका लेखन कार्य हुआ है उनके प्रति जो श्रद्धावान पुरुष हैं, वो विचार पर श्रद्धा करके विचारों बिना भी कर्म सम्यक अनुष्ठातुम शक्नोति। अब वहां पर बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि जो ऋषियों ने इतना परिश्रम करके हमारे लिए, हमारे मनुष्य जीवन में जो ऋण बताए गए हैं उसमें ऋषि ऋण किस लिए बताया गया, इसलिए तो ऋषि ऋण बताया है। हाँ, हम लोगों की सुविधा के लिए ऋषियों ने कितना परिश्रम किया बाबा, तो वो जो ऋषियों का ऋण है उसी से तो उतरता है। अब उन ऋषियों पर विश्वास तो होना ही चाहिए, तो जैसे उन ऋषियों के ऊपर या उनकी कृति पर विश्वासवान जो पुरुष होता है वो विचारा बिना भी कर्म सम्यक अनुष्ठातुम शक्नोति, बिना विचार किए भी उस कर्म को सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करने में समर्थ होता है, कर सकता है। ननो तत्र उपासना विचारा भावात तद अनुष्ठानम न संभवेद इति आशंका है। कहते हैं जी भाई, उपासना विचारा भावात तद अनुष्ठानम न संभवेत, उपासना के विचार के अभाव में उस उपासना का जो अनुष्ठान है, अनुष्ठेय तत्व के संबंध में उपासन कार्य है, वो न संभवेत, वो भी संभव नहीं होगा। ये पूर्व पक्ष प्रश्न उठा रहा है। आपने ये कहा कि जो श्रद्धा कर लेता है वो श्रद्धावान जो पुरुष है विचार के बिना भी सम्यक अनुष्ठान रूपी कर्म को करने में समर्थ होता है, बिना विचार के भी कर सकता है। विचार उन्होंने कर लिया, अब हमको करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कल्प सूत्रों आदि में सब का शास्त्रों का विचार करके एक जगह अर्थ को संग्रहित कर दिया है, तो विचार तो उन्होंने कर लिया, अब हमको करने की जरूरत नहीं है। तब यह कहते हैं कि जब विचार करने की जरूरत नहीं है तो उस अनुष्ठान को भी करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने विचार किया उन्होंने अनुष्ठान कर लिया होगा, है? वो भी तो संभव नहीं है। उपासना विचारा अभावा तद अनुष्ठानम न संभवेत, उपासना के संबंध में विचार का अभाव मानने पर कि विचार की जरूरत नहीं है तो तद अनुष्ठानम न संभवेत, फिर अनुष्ठान की भी क्या जरूरत है, वो भी संभव नहीं है। तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है, विचार की जरूरत नहीं, विचार उन्होंने कर लिया, लेकिन अरे धन पहले वालों ने कमा लिया, पर कम से कम खाने का काम तो खुद करो, भोगने का तो है? मैंने तो उन्होंने की है, उसका भोग तो अपने को ही करना होगा। ये नहीं कि उन्होंने किया और उन्होंने भोग लिया, जिन्होंने किया उन्होंने भोगा है तो वो तो उनके साथ में गया, तुम्हें क्या मिला? पूर्वजों का धन पूर्वजों ने कमाया और पूर्वज ही भोग जाते तो हमें क्या मिलता, लेकिन पूर्वज कमा करके धन छोड़ गए तो पहला काम तो यह बनता है कि उन्होंने कैसे कमाया कैसे किया ये सोचने की बजाय जो मिल गया उसका आनंद ले लो। घर में भोजन बना हुआ है, अब बनाने वाले ने खाया है कि नहीं खाया ये क्यों विचार करते हो? तुमको भूख लगी है तो पहले तुम खा लो, और खाओ तो नहीं और बैठे बैठे सोचने लगो कि कैसे बनाया होगा, कहां से सामान लाए होंगे, किस तरह से बनाया होगा, हाथ धो के बनाया, बिना हाथ धोए ही बना दिया, सब्जी को धोकर के बनाया कि खरीद करके सीधा ऐसे बना दिया, वो सारी मीमांसा में लगा रहेगा तो भूख मिटेगी क्या? वो तो ये यही कह रहे हैं कि भाई विचार जो उन्होंने पहले वालों ने कर लिया उसके लिए आपको विचार की जरूरत नहीं है, ऐसा कहते हो तो फिर उसके अनुष्ठान की भी क्या जरूरत है, वो भी संभव नहीं है, अनुष्ठान भी मत। तब उसका उत्तर देते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भोजन किसी ने भी बनाया है लेकिन खाने का अधिकार तो परिवार में सभी को है, ऐसे ही सब करना ही चाहिए। उपास्ते नाम अनुष्ठान मार्षग्रंथे सुवर्णिताम् विचारा क्षमा मर्त्याश्च तश्रुत्वोपासते गुरोः उपास्ते नाम अनुष्ठान मार्ष ग्रंथे सुवर्णिताम् विचारा क्षमामर्त्याश्च तत्श्रुत्वोपासते गुरोः। हाँ उस उपासना का विचार जिसके लिए संभव नहीं है उसका अनुष्ठान उसके लिए संभव है। विचार तो नहीं कर पाएगा क्योंकि इतना अध्ययन तो नहीं किया, इतना समय परिश्रम नहीं कर पाया, परंतु फिर भी उसका अनुष्ठान किया जा सकता है। कैसे करेंगे अनुष्ठान? बोले ऐसे होगा, उपास्ति नाम अनुष्ठानम आर्ष ग्रंथेषु वर्णितम। जिसको उपासना बोलते हैं उन उपासनाओं का जो अनुष्ठान है कि उसको कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, उसके संपादन का तरीका क्या है, ये आर्ष ग्रंथेषु वर्णितम। जो आर्ष ग्रंथ हैं उनमें उसका वर्णन किया गया है। आर्ष ग्रंथ जो महापुरुष जिन्होंने शास्त्र का निर्णय भी किया है और उन उपासना को अपने जीवन में भी उतारा है, अनुष्ठान किया है, तो जो उस रास्ते को जान करके रास्ते पर चले हैं, एक व्यक्ति होगा जो केवल रास्ते की जानकारी रखता है। अब मार्ग की जानकारी तो आप मोबाइल पर मैप खोल करके भी कर सकते हो, रास्ते की जानकारी तो हो गई, सामान्य जानकारी हो सकती है, लेकिन उस रास्ते में कितने कैसी कैसी परिस्थितियां आती है, कैसा वातावरण होता है, वहां का हवामान कैसा है, वहां के प्राकृतिक लोग कैसे हैं, वहां की भूमि कैसी है, ये सारा तो तभी मालूम पड़ेगा जब उस रास्ते में चले। और एक व्यक्ति उस रास्ते को जान करके उस रास्ते पर चला और चल करके फिर उसका वर्णन करता है कि मार्ग ऐसा है, मैंने जाना है और फिर उसको अनुभव किया है। तो जान करके जो अनुभव करने वाले पुरुष होते हैं उनका जो लिखित ग्रंथ है वो आर्ष ग्रंथ कहलाते हैं। उनके अनुभव युक्त जो कहे हुए ग्रंथ हैं उन आर्ष ग्रंथों में ये वर्णित है। क्या? उपास्ति नाम अनुष्ठानम, जिनको उपासना बोलते हैं उन उपासनात्मक जो कर्म है उनके अनुष्ठान को आर्ष ग्रंथों में वर्णन किया गया है। इसलिए विचार अक्षमम अक्षम मृत्याश्च, जो विचार करने में अक्षम है, क्षम नहीं है, अक्षम है, असमर्थ है, वो लोग जो उसके संबंध में उपासना के संबंध में विचार करने में समर्थ नहीं है वो मर्त्याश्च। कौन है वो मर्त्य है? ऊपर जिन्होंने आर्ष ग्रंथ लिखे हैं वो क्या है? वो मृत्यु से छूटे हुए हैं, वो पार किए हुए हैं, अनुभवी पुरुष हैं, लेकिन वो लोग जो अभी मर्त्य है, काल के गाल में जा रहा है, मर रहा है, मरण धर्म मान रहा है, उसको मरने का डर लग रहा है, इसलिए उपासना की जाती है कि मरो नहीं मरो नहीं मरो नहीं। हाँ, उपासना किस लिए कर रहे हैं? मरने से बचने के लिए। तो सबको कोई आकर के महात्मा कोई आए, ऐसा सिद्ध पुरुष आ जाए हमारे अलावा दूसरा बैठ करके कोई कहे कि आज के बाद तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, कोई नहीं मार सकता, तो कल से आना ही छोड़ दोगे। क्यों छोड़ देंगे? हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने नहीं बोल दिया नहीं मरेगा, जा धरती पे नहीं मरेगा, आसमान में नहीं मरेगा, घर में नहीं मरेगा, बाहर नहीं मरेगा, अस्त्र से शस्त्र से किसी से नहीं मरेगा, किसी पृथ्वी निवासी से ब्रह्मा द्वारा निर्मित व्यक्ति से नहीं मरेगा। फिर क्या किया? वो मरने का तो डर नहीं रहा, अब उपासना छूट गई कि नहीं? उसकी उपासना तो छोड़ दी, मंदराचल पर्वत छोड़ दिया और इंद्र को भगा करके उसके आसन पर जा बैठा, व्यक्ति कहां से क्या कर गया? तो ये जितने उपासना आदि होती है किसके लिए? इसी के लिए तो, कि मरू नहीं मरू नहीं। और ये उपासना करने से पूर्व क्या है? कहते हैं विचार करने में अक्षम मर्त्य है, विचार करने में असमर्थ जो पुरुष है मनुष्य है, तत श्रुत्वा उपासते, तत गुरु श्रुत्वा उपासते, उस उपासना को गुरु के मुख से सुन करके उपासना करता है। अब वो ज्यादा उसमें विचार नहीं करता है, जैसे गुरु ने कह दिया एक शालिग्राम दे करके कि तुम इसकी पूजा करो, एक तुलसी की माला देकर के कहा कि भगवान विष्णु का मंत्र देता हूं और तुम इससे जप करो। गुरु ने एक स्फटिक माला दे दी, कहा तुमको विद्या चाहिए तो ये स्फटिक माला जिसको बहुत पसंद है उसका जप करो, उसका ध्यान करो, क्योंकि ये सरस्वती जी को बहुत पसंद है इसलिए इसकी माला से सरस्वती का जप करो, तुम्हें विद्या आ जाएगी। वंदे स्फाटिक मालिकाम ऐसा बोलते हैं, सरस्वती जी स्फटिक माला धारण करती हैं इसलिए तुम स्फटिक माला से जप करोगे तो सरस्वती जी प्रसन्न हो जाएगी। इतना गुरुजी ने कह दिया और बस इसी से हम उसके जप में लग गए, मंत्र में लग गए, अनुष्ठान में लग गए। अब विचार कहां किया, वो लंबा चौड़ा विचार की वहां कहां जरूरत है, वहां विश्वास करके ही लग जाते हैं। तो जो विचार करने में असक्षम पुरुष होते हैं उनके लिए गुरु से सुन करके उपासना की जाती है। कौन सी उपासना, जो आर्ष पुरुषों के द्वारा आर्ष ग्रंथों में वर्णित उपासना है उसको किया जाता है। शेष प्रसंग आपको कल सुनाएंगे, घड़ी इनकार कर रही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।